श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय ईश अनुभूति का शुभारंभ श्लोक क्रमांक 6। एतावान् सांख्य योगाभ्याम एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः अन्ते नारायणस्मृतिः एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। एतावान् ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्म विषयक पूर्ण ज्ञान योगाभ्याम योग शक्ति के ज्ञान से स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति परक कर्तव्य परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति का ज्ञान जन्म जन्म लाभ लाभ परम परम पुंसाम पुरुष का अन्ते अंत में नारायण भगवान की स्मृति ही स्मृति या याद। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। तात्पर्य नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन पालन तथा अंत में संहार होता है वह महत्तत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम रूप गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के आदि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र शास्त्रानुमोदित प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषि या नव प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है और जैसा कि यहां पर इंगित हुआ है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हरेक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण की वृद्धि करता रहे। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। तो परीक्षित महाराज के दो प्रश्न का गुणगान करते हैं और उत्तर देने की शुरुआत किए सुखदेव गोस्वामी। सर्वप्रथम तीन श्लोकों में उन्होंने जो पूर्ण रूप से अपने आप को शरीर समझकर इस भौतिक संसार को ही सर्वस्व मानकर यहां सुख करने की जो गलत धारणा को अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर रहते हैं उनकी निंदा करते हुए या इस विचार की निंदा करते हुए उनके कार्यकलापों की निंदा करते हैं, उनकी मग्नता और उनके जो सतर्कता जो भौतिक चीजों के प्रति है उसकी पहले निंदा करते हैं और आचार्य कहते हैं कि इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी हमें सूचना देते हैं कि किस प्रकार के कार्यकलाप, किस प्रकार की मग्नता और किस प्रकार की सतर्कता से होशियार रहना है, नहीं करना है। और तत्पश्चात उत्तर देते हैं क्या करना चाहिए हमेशा और खास करके मृत्यु के पास आने पर, मृत्यु की सूचना मिलने पर। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। कल हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा की क्यों हमें सुनना, श्रवण करना, गुणगान करना और स्मरण करना खास भगवान की क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वात्मा है, भगवान है, ईश्वर है और हरि सारे अनर्थ को हर सकते हैं, तो उनसे योग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है। इनफैक्ट उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पूजनीय नहीं है, केवल और एक व्यक्ति, वो है उनके शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान और भक्त भक्ति पूर्ण रूप से अद्वितीय या एब्सोल्यूट होने के कारण भक्तों का गुणगान भी भगवान के गुणगान के समान ही है, उनका स्मरण भी, उनका गुणगान भी, उनके बारे में श्रवण करना भी उतना ही फायदामंद है और अभिन्न है एक्चुअली भगवान के, क्योंकि भगवान अपने पार्षदों के साथ हमेशा निवास करते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण या कीर्तन करते हैं, क्योंकि भगवान अपने नाम, रूप, गुण और लीला से अभिन्न है, इसीलिए उनको परम सत्य कहा जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एवरीथिंग अबाउट हिम इज एब्सोल्यूट। हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में अंतर है, हमारे आंख में, हमारे पैर में अंतर है। हम आंख से देख सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, आंख से चल नहीं सकते, पैर से देख नहीं सकते, पर भगवान ऐसे नहीं है। अंगानी अस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, हरेक इंद्रियों से हरेक दूसरे इंद्रियों का काम कर सकते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। एक में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, भगवान के शरीर में, भगवान के पैर में, भगवान के आंख में, कान में, कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणगान में, भगवान की लीला में, स्मरण में, भगवान के धाम में, भगवान के विग्रह में, भगवान के प्रसाद में, कोई अंतर नहीं है। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है, पूर्ण रूप से भगवान को जाना है। साधना भक्ति में हम भगवान को देखना चाहते हैं, साथ में विग्रह सामने है, पर हमको कहते हैं कि प्रभु दर्शन दो। हम कहते हैं महाप्रसाद है गोविंदे, पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है कि प्रसाद भगवान से अभिन्न है। जो अच्छा लगता है वो गुलाब जामुन प्रसाद भगवान से अभिन्न है, क्योंकि मेरे जीवा को बहुत आनंद करता है वो करेला प्रसाद। तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर न होने के कारण ऐसा देखते हैं। तो यहां क्योंकि भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन करना भगवान से अभिन्न है, जो व्यक्ति इस तत्व को समझ गया है, वो व्यक्ति जब भगवान के बारे में सुन रहा है या भगवान के नाम जप कर रहा है, डायरेक्टली भगवान की अनुभूति कर रहा है वो। जैसे हरिदास ठाकुर, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, जहां सूरज है वहां अंधकार नहीं है, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। तो हमेशा अगर एक व्यक्ति श्रवणम और कीर्तनम करते रहे, कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम, जब ये करेंगे तब एक्चुअली कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, और जब कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो माया का प्रभाव भय भयं द्वितीया अभिनिवेशत स्याद ईशाद अपेस्तस्य विपर्ययो अस्मृति। भय कब होता है? जब हम समझते हैं कि भगवान की जब विस्मृति हो जाती है, हम समझते हैं कि भगवान से भी श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है, अगर वो हमारा बिगाड़ना चाहे तो भगवान भी नहीं बना सकता उसका, तब हम भयभीत हो जाते हैं, अगर ये आदमी कुछ कर देगा तो भगवान क्या करेंगे बेचारे। द्वितीय मतलब कोई दूसरी चीज है जो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। पर जो समझ जाता है कि भगवान सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानां भोक्तारं यज्ञ तपसां, वो शांत है, किसी स्थिति में वो विचलित नहीं होता। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को आश्वासन दे रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है, कि खास करके अभी जीवन के अंत में आपने सर्वस्व त्याग कर खास पूर्ण रूप से भगवान के स्मृति में, नारायण स्मृति में लगाने का निर्णय जो लिया है बहुत अच्छा है। कंग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। और आज के श्लोक में, इस श्लोक में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि खास करके तुम्हारे लिए बहुत लागू है महाराज, क्योंकि तुम मौत के निकट आ गए हो, तुम्हें सूचना मिली है। बड़े सौभाग्यशाली हो कि एक हफ्ते में तुम शरीर छोड़ने वाले हो, यह तुम्हें सूचना मिल गया है। और खास करके तुम्हारे लिए जो अभी शरीर छोड़ने वाले हो, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन की परिपूर्णता है। भले कुछ भी करो, तुम सांख्य, सांख्य का अध्ययन करो, ये क्या है, नीति नीति नीति, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, योगाभ्याम ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिन, योग की पूर्णता भी वही है, सांख्य की पूर्णता भी वही है, स्वधर्म की पूर्णता भी वही है, यत करोषि यदश्नाशी यज्जुहोषि ददासी यद यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम। सच देखा जाए तो अष्टांग योग की पूर्णता, सांख्य योग की पूर्णता, स्वधर्म की पूर्णता, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा से नोत्पादित रतिम यदि रतिम श्रमये वही केवलम। तो इसकी पूर्णता तब है जब हम उस पथ के द्वारा भगवान की स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं। कोई भी योग की पूर्णता भक्ति में आती है, जैसे सारे नदियां अंत में समुद्र में मिलते हैं, इसी तरह से सारे योग मार्ग की पूर्णता तभी है जब भक्ति में वो मिलती है। इट रिजल्ट्स इन डिवोशनल, भक्ति में उनका उस योग का परिणाम अंततः भगवान की भक्ति। भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपह तपह अप्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोकरंजनम। भगवान की भक्ति के बिना जाति, जप, तप, योग, सांख्य, स्वधर्म कैसा है? ये मृत शरीर के ऊपर सजाने जैसा है। मृत शरीर को कितना भी सजा दो कोई आकर्षित नहीं होता उससे। अच्छा धर्मावड़म साड़ी पहना दो उसको, स्त्री हो तो, या पुरुष हो तो उसको एकदम सोने की, आपको सोने की डायमंड की अंगूठी लगा, अंगूठी ले जाएंगे तो उसको कोई देखेगा नहीं, कोई आकर्षित नहीं होता उस व्यक्ति से। वाह क्या लग रहा है, काश मैं भी ऐसा होता। कोई आकर्षित नहीं होता है। इसी तरह से योग अपने आप में, योग अपने आप में सांख्य, अपने आप में सुधर्म सब कर रहे हो, पर अगर वो भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, या इफ इट डजंट कल्मिनेट, इसका सही शब्द मुझे हिंदी में नहीं मिल रहा है, इफ इट डज नॉट कल्मिनेट इन भक्ति, अंततः फिर वो व्यर्थ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे एक बार मुरारी गुप्त के पास गए। मुरारी गुप्त छोटे बच्चे थे चैतन्य महाप्रभु, मुरारी गुप्ता को मालूम नहीं था कि भगवान है वो, पर अच्छा लगता था, ये निमाई बहुत सुंदर है। तो एक दिन बहुत कर्मकांड के बारे में गुणगान कर रहा था, कर्म योग, ये तो अलग अलग योगों के बारे में बड़ा गुणगान कर रहा था। तो निमाई पंडित ने कहा कि आज दोपहर को मैं इसको सिखाता हूं, और मुरारी गुप्ता दोपहर को खाने के लिए बैठे, फर्स्ट क्लास प्रसाद वसाद रखे हुए थे, और जैसे ही पहला ग्रास लेने वाले थे छत एकाएक वहां निमाई पंडित आया, और निमाई पंडित इतने सुंदर से सजे हुए थे, उनके बाल ऊपर में एक गांठ बंधे हुए थे, उसके कुछ फूल लगी हुई थी, बहुत सुंदर से सजे हुए थे। भाग कर आए, ऐसे वेशभूषा थी कि निमाई पंडित पहचान भी नहीं पाए, मुरारी गुप्ता। निमाई पंडित आए, छोटे बच्चे, सीधा प्लेट के सामने खड़े हुए और प्लेट के अंदर पिशाब कर दिया और हंसते हुए भाग, ये खड़े हुए थे। तो बोले ये क्या किया तुमने, प्रसाद है खाने वाला हूं, तुमने ऐसा कर दिया, खाओ। बोले तुम्हारा सारा योग, सारा कर्मकांड, सारा ज्ञान, सारा सांख्य, सारा स्वधर्म बिना भक्ति के ऐसे ही है। अच्छा खासा इसमें तुमने पेशाब कर दिया। तो इस तरह से बिना भक्ति के ये सारे जो योग पद्धति हैं अपने आप में अपूर्ण है, उनकी परिपूर्णता, हाँ दिस इज द वर्ड, हर एक योग की परिपूर्णता है भक्ति में आना चाहिए। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, मेरा मत क्या है, छठे अध्याय के 47वें श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमां समय युक्त तमो मत। मेरे मत में वही सबसे बड़ा योगी, भगवान का मत है। तो महाराज परीक्षित को आश्वासन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कह रहे हैं, न केवल प्रोत्साहन देने के लिए बट निश्चित रूप से कह रहे हैं, परम सत्य जो है वो बता रहे हैं, कि तुमने जो निर्णय लिया है भगवान के गुणगान सुनना और स्मरण करना, ये जीवन की परिपूर्णता है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, हाँ ये देखिए, यही श्लोक में यही मैं वाक्य पढ़ रहा था, इसके तात्पर्य में है वो। भगवान के श्रवण तथा, सॉरी ये नहीं, आज के श्लोक का हां लास्ट, दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए, मोल्ड को ढालना बोलते हैं ना, उसमें गर्म रहता है उसको, कुछ भी मिट्टी को या गरम गरम लोहे को जिस जैसा मोल्ड में डालते हैं वैसा बन जाता है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान का के स्मरण में वृद्धि करता रहे। लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग इट इन सच ए वे दैट हियरिंग एंड चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज इज द मेन फोकस। दैट इज टाइम मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, दैट इज रियल मैनेजमेंट। नहीं तो मैनेजमेंट सिर्फ प्रसाद में पिशाब करने के बराबर है, कुछ नहीं, अपने आप में मैनेजमेंट कुछ नहीं है। तुम जो भी मैनेजमेंट करते हो, मंदिर मतलब मंदिर चलाना मतलब मैनेजमेंट, पर इतना मैनेजमेंट में बिजी है कि श्रवणम कीर्तन में समय नहीं है, तो मैनेजमेंट भौतिक हो गया। मतलब यही है, ऐसा मैनेज करो ताकि सब लोग श्रवणम कीर्तनम अच्छा से करें, दिस इज मैनेजमेंट। श्रवणम कीर्तनम चल रहा है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है तो भी समस्या है। बोलेंगे श्रवणम कब होगा? कभी भी, जब लोगों को मूड आएगा तब होगा। आज मूड आएगा तो करते रहेंगे, ऐसा नहीं, मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्यों मैनेजमेंट करना चाहिए? ताकि सब लोग एक साथ आके श्रवणम कीर्तन करें, संकीर्तन, ये बहुत जरूरी है। देवामृत महाराज ने बहुत सुंदर बताया, चैतन्य महाप्रभु जब एक पठान से मिलने जा रहे थे, बहुत इंटरेस्ट लिया उसने महाप्रभु में, तो साथ साथ में दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, पठान ने बुलाया और कहा आपको अकेले आना चाहिए। नहीं, पठान बोला मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूं, महाप्रभु से मिलना चाहता हूं। तो उनके जो पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, कोई एक पंडित कोई थे, वो पार्षद हैं भगवान के, उन्होंने उस पठान को कहा तुम अकेले आओ या ज्यादा से ज्यादा दो या तीन लोगों को ले आओ और बिना अस्त्र शस्त्र के आना। तो देवामृत महाराज बोले दिस इज मैनेजमेंट, फर्स्ट कम्स स्पिरिचुअल देन कम्स मैनेजमेंट। स्पिरिचुअल चलने के लिए मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कर रहे हैं और बाय चांस टाइम मिला तो थोड़ा श्रवण कीर्तन भी हो जाए, नहीं। स्पिरिचुअल हियरिंग एंड चैंटिंग इज फर्स्ट मैनेजमेंट। तो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है वो पार्षद को मालूम था, पर फिर भी ही सेड नो, एक सन्यासी से तुम मिलने आ रहे हो, पूरी सेना को लेकर क्या आने की जरूरत है, तुम सिर्फ उनसे मिलना चाहते हो ना, क्योंकि सरकारी क्या पता नहीं कैसा आदमी है, क्या किस लिए आ रहा है। बोले अकेले आओ या ज्यादा से ज्यादा दो लोगों को ले आओ और साथ में अस्त्र शस्त्र मत लाना अगर सन्यासी से मिलने आ रहे हो। तो बोले मैनेजमेंट शुड फॉलो लाइक ए शैडो टू हियरिंग एंड चैंटिंग प्रोसेस। जैसा आदमी चलता है तो उसके पीछे पीछे परछाई चलती है, वैसे श्रवणम कीर्तनम होना है तो मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने जीवन को मैनेजमेंट करना चाहिए, नहीं तो श्रवणम कीर्तनम नहीं होगा। संस्था को मैनेज करना चाहिए, नहीं तो श्रवणम कीर्तनम केंद्र में नहीं रहेगा। परिवार को मैनेज करना चाहिए ताकि श्रवणम कीर्तनम केंद्र में रहे। दैट इज द होल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अंते नारायण स्मृति, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति। अगर हम लड़ाई जीत गए पर युद्ध हार गए तो क्या फायदा? फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट किया, परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, परफेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई स्ट्रेस नहीं है, इसीलिए मैं सोता रहूंगा दिन भर, क्या फायदा फिर? होल आइडिया इज मैनेजमेंट शुड फॉलो लाइक ए शैडो एसेंस इज श्रवण मनन कीर्तन. अगर मैनेजमेंट बोतल है तो श्रवणम कीर्तनम पानी है. पानी है तभी तो बोतल है. बिस्लेरी बोतल के लिए 13 रुपया क्यों देते हम लोग? पीने के बाद वो बोतल फेंक के चले जाते हम लोग. बोतल को कोई फायदा नहीं, बट बोतल बहुत जरूरी है अगर पानी को रखना है पूरे जर्नी के लिए. बोतल के बिना पानी धोती में नहीं रह सकते. अच्छा जेब में रखूंगा मैं पानी को, नहीं, पानी को रखना है तो बोतल चाहिए. पर अपने आप में बोतल कोई फायदा नहीं. तो ये सांख्य योग ये सब जो है ये सब बोतल के समान और भक्ति जो है वो पानी के समान. पानी नहीं, अमृत, नामामृत, कथामृत. तो यो प्रभुपाद जी का सुंदर शब्द है. दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण की वृद्धि करता रहे. वृद्धि करता रहे, ऐसा नहीं कि 4 साल से वही चीज कर रहा, नहीं, वृद्धि होना चाहिए क्योंकि मृत्यु की ओर प्रगति हो रही है. काल जो है हमको मृत्यु की ओर ले जा रहा है. परीक्षा आने वाला है, जीवन तैयारी है और अंतिम जो मृत्यु है परीक्षा है. जैसे जैसे परीक्षा के पास जाएंगे दूसरी चीजें कम और पढ़ाई ज्यादा, स्वाभाविक है. अगर हमको अगले क्लास में जाना है, पास होना है, तो अगर इच्छता अभयम, अगर भय से मुक्त होना है, भौतिक जो चेतना है उससे मुक्त होना है, तो धीरे 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 स्मरण कीर्तन बढ़ना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम बढ़ना चाहिए, स्मरणम बढ़ना चाहिए, गहराई में और दीर्घता में, काल में बढ़ना चाहिए. इसका मतलब हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने जीवन का. तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी और एक श्लोक 6 स्कंद का 2 अध्याय का 13वां श्लोक का रेफरेंस लेते हैं, जहां विष्णु दूत आए जब अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया और यमदूत भी आए क्योंकि पूरा अकाउंट उनके पास था और यमपाश डाल भी दिए और खींच के ले जा रहे थे उस सूक्ष्म शरीर को. विष्णु दूत आए और बोले ठहरो 1 मिनट, तुम नहीं ले जा सकते. ये एक्चुअली पूर्ण रूप से सारे पापों से शुद्ध हो गया ये. बोले क्या? अरे पूरा लिस्ट देखो इसका. नहीं तो फिर उन्होंने एक श्लोक कहते हैं, अथैनम मा आपयनत कृताशेष अघनिष्कृतम यदसौ भगवान नाम म्रियमाण समग्रहीत. कहते हैं कि क्योंकि अथ एनम इस व्यक्ति ने, अथ एनम मा आपयनत, आप कृपया इसे नरक की ओर मत ले जाओ, यमराज की ओर मत ले जाओ. क्यों? कृत अशेष अघ निष्कृतम, इसने अशेष अघ या पाप की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको उसने एक स्ट्रोक, कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, एक स्ट्रोक में उसने, एक हथौड़ी में उसने करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है. कैसे? यद असौ भगवन नाम, क्योंकि मरते समय इसने नारायण का नाम लिया. म्रियमाण समग्रहित, मृत्यु के समय इसने भले वो अपने पुत्र को संकेत करते हुए एक चौना, पर क्योंकि उसने नारायण का नाम ले लिया तो सारी चीजों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया. अंतकाले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय. भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु के समय अंतकाले चमाम एव, मेरा स्मरण करते हुए कलेवर अपने शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति इस तरह से अपना प्रयाण शुरू करता है, स मत याति मेरे को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे नेचर स्वभाव को प्राप्त करता है, सच्चिदानंद स्वरूप को, इसमें न अस्ति अत्र संशय. तो इस श्लोक, इस अध्याय के अंत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, म्रियमाणो हरिर्नाम घृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम पुनर्श्रद्धया गृणन। अजामिल ने नारायण का नाम लिया, कब लिया? पूरी जिंदगी नहीं लिया उसने, म्रियमाण सिर्फ मरते वक्त लिया। जिंदगी भर फालतू काम करता रहा, पहले थोड़ा किया था, शुरुआत में अच्छा संस्कार था, पर थोड़े संग से एक क्षण का असत्संग के कारण पूरा जीवन उसका बर्बाद हो गया, पूरा पाप कर्म में लगा रहा। तो म्रियमाण सिर्फ मरते वक्त म्रियमाण हरिनाम, और ऐसा नहीं कि नारायण को संबोधित करते हुए नहीं, घृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र को संबोधित, अरे अरे नारायण, ऐसा कोई तकलीफ हो रहा है तो पास में जो है प्रभु उसको बुलाते हैं, जो सामने उसको बुलाते। तो घृणन पुत्रोपचारितम सिर्फ मरते वक्त लिया, और वो भी पुत्र को संबोधित करते हुए लिया, और कौन? अजामिल जैसा पापी व्यक्ति, जिंदगी भर उसने पाप किया, कम से कम 20 साल से 80 साल तक, 60 साल तक पाप ही पाप किया उसने, और ऐसा पाप उस वेश्या को मेंटेन करने के लिए कि कोई जो मतलब जगह मदाई के बाद शायद उसका नंबर आता है। तो मरते वक्त लिया, पुत्र को संबोधित करते हुए लिया, पापी व्यक्ति भगवान का नाम लिया, और अजामिलोपि, अरे अजामिल भी अगाध धाम, अंततः भगवत धाम गया वो। किम पुनर्श्रद्धया गृणन, तो फिर अगर श्रद्धा भाव से कोई लेता है, शुद्ध जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, फिर ले रहा है, पाप कर्म से नहीं ले रहा है, और ऐसा नहीं कि मरते समय लूंगा अभी बस मौज मस्ती करूंगा, नहीं, हर रोज बेचारा तकलीफ बड़ी तपस्या के साथ 16 माला करने की कोशिश कर रहा है गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए, तो क्या उसको भगवत धाम नहीं होगा? क्यों नहीं? तो अजामिल का जो प्रसंग है ये हमें थोड़ा होप देता है, होप गिविंग। चलो यार कुछ तो होप है, मेरे को लगता था तो मैं तो एकदम गया गुजरा हूं, क्योंकि मैं जब करता तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे विचार आते हैं। अरे गंदे गंदे विचार नहीं, वो आचार करता था वो गंदे गंदे पूरा जिंदगी भर। तो इस तरह से यहां शास्त्र के द्वारा स्थापित कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि यस यही सही परिपूर्णता ये है कि यदावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ परह, सबसे बड़ा लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, परह लाभ पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, और अगर अंत में नारायण की स्मृति तब होगी जब जिंदगी भर हमने उसका अभ्यास किया है, नहीं तो फिर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सबसे प्रिय है हमारे हृदय में वही उस समय आएगा। जैसे 10 वजन लीजिए और ऊपर से डालिए, जब जो सबसे भारी चीज है वो सबसे नीचे पहुंचेगा पहले। इस तरह से जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है हमारे मन को, वही हमारे मन को मृत्यु के समय आएगा। तो आज आप थोड़ा शायद भागवतम के बाद कभी समय मिले तो एनालाइज कीजिए, मतलब फ्रैंकली बड़े प्रामाणिकता से अपने हृदय में जाइए, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है मुझे? मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा चेकबुक, या एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन? सबसे ज्यादा प्रिय पूरे सृष्टि में कौन है मेरे लिए? फ्रैंकली एनालाइज कीजिए। आप बोलेंगे प्रभु जी कुछ मालूम होना चाहिए, कृष्ण है। ऐसा नहीं चलेगा, जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे क्वालिटी का समय निकाल रहे हो आप, यह सबूत। कृष्ण, आवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आवर वर्ड्स, हमारी क्रियाएं भगवान को हमारी इच्छा ज्यादा दिखाती है। कोई भी बोल सकता है कृष्ण तो सबसे प्रिय है प्रभु जी मेरे लिए, हाँ इंटेलेक्चुअली प्रिय है, पर हृदय से प्रिय है क्या? जो कर्मी आदमी है, जो पैसा कमाता है, वो परिवार को भी भूल जाता है पैसा कमाने के लिए, परिवार को त्यागने के लिए तैयार है, देश को त्यागने के लिए तैयार है, बच्चों को त्यागने के लिए तैयार है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सबसे प्रिय है उस व्यक्ति के लिए। कुछ लोग सब कुछ त्याग देते, पैसे भी त्याग देते, किस लिए? यश के लिए, नाम के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। बड़े बड़े हिमालय में एक बार मुझे पता चला, एक साधु एक गुफा में रहता था और दूसरा गुफा में दूसरा साधु रहता था। तो एक दिन एक साधु ने बंदूक लाया और दूसरे साधु को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके गुफा में ज्यादा लोग आते हैं उसको सुनने के, उसका दर्शन करने के। तो ईर्ष्या हो गया उसको, हे उसके गुफा में इतने लोग आते, अरे सब कुछ छोड़ दिया, पर ईर्ष्या नहीं छोड़ पाया। ये सचमुच की घटना ही है, सचमुच की घटना हिमालय में हुआ है। उसके पास कुछ नहीं है पर कहीं से तो बंदूक लाया हो सबको त्याग दिया, फिर AK-47 तो जो सबसे तीव्र इच्छा है हमारे हृदय में, स्वाभाविक रूप से वो मृत्यु के समय में बाहर आएगी। उसका हम आश्रय लेंगे, सबसे प्रिय व्यक्ति का आश्रय, क्योंकि अजामिल को उसका पुत्र सबसे प्रिय था, इसीलिए नारायण उसको बुलाया उसने, कम से कम अच्छा नारायण नाम रखा था उसको, टिंकू पिंकू ऐसा कुछ नहीं रखा, कम से कम नारायण रखा, चलो नारायण अच्छा हो गया। कहा सो ये कहने के बाद फिर अगले श्लोक में परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजन, तुम ऐसा मत समझो कि अंत्य नारायण स्मृति जो मैं कह रहा हूं ये केवल तुम्हारे जैसे राजाओं के लिए है, नहीं, पूर्ण रूप से वैरागी योगियों के लिए, पूर्ण रूप से वैरागी साधुओं के लिए, संतों के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। इस भावना से अगला श्लोक कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निर्वृत्ता विधि छेद सह निर्गुण्यस्था रमन्ते स्मा गुणानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तुम जो आनंद कर रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल तुम लोगों के लिए बताया गया है, नहीं, पूर्ण रूप से वैरागी जिन्होंने पूरे संसार को भी त्याग दिया है, ऐसे लोग भी हरि कथा हरि नाम हरि श्रवण इसमें आनंद लेते हैं। तो इस भावना से वो ये श्लोक कहते हैं। तो भगवान का गुणगान करना न केवल राजाओं के लिए या भौतिकवादी में जो अटके हुए हैं वैसे लोगों के लिए है, बल्कि ऐसे संतों के लिए हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं, वो भी हरिनाम हरि कथा में आनंद लेते हैं। और इस तत्व को साबित करने के लिए शुकदेव गोस्वामी अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं। हे राजन, मुझे इस संसार में किसी चीज से आसक्ति नहीं थी, जब मैं पैदा हुआ मां के गर्भ से, सबसे पहले गर्भ से निकलने नहीं रहा था मैं, मुझे नहीं आना था बाहर, उस गर्भ में जो परिस्थिति है, तकलीफ है, वो तकलीफ में मेरा अच्छा था, क्योंकि मैं माया से भयभीत रहूंगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था, पर क्योंकि मेरे पिताजी ने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण ने मुझे आश्वासन दिया, तभी मैं बाहर आया 16 साल की उम्र में, और आया तो सीधे निकल पड़ा मैं। ऐसा मैं ब्रह्मवादी था, मैं एब्सोल्यूटली नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग मेटीरियल, भौतिकता में कुछ भी लेश मात्र, इसीलिए मैं पैदा होते ही चलते निकल पड़ा मैं, बिना कोई संस्कार वंस्कार कुछ नहीं, जन्म जात संस्कार जात का कुछ नहीं, सीधा निकल पड़ा मैं, बस इस जड़ भरत जैसा, उसे कुछ फंसना ही नहीं संसार में। ऐसा वैरागी, नग्न स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी उनमें, और एक नंगे पेड़ में उन्होंने कोई अंतर नहीं देखा, उनके हृदय में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। चैतन्य महाप्रभु खुद एक भक्त के रूप में कहते हैं कि लकड़ी का स्त्री का स्वरूप भी देखता हूं तो मेरे मन में विकार पैदा हो जाता है। पर सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे कि लकड़ी तो नहीं, साक्षात नौजवान 16 साल की स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, और उनका देखना और एक पेड़ को देखना उनके लिए बराबर था, क्योंकि पंचभूत से महाबनी ये बनी हुई है और ये शरीर भी पंचभूत से बनी हुई, कोई अंतर नहीं उसके। ऐसे व्यक्ति भी जब व्यासदेव की कृपा से भगवान का भागवतम सुने, भागवतम मतलब भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम और उनके भक्तों के साथ उनका प्रेममयी आदान प्रदान, जब वो सुने जो पूर्ण रूप से दिव्य है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिकता का कलमश नहीं है, वो भी आकर्षित हो गए, वो भी आकर्षित हो गए। एक्चुअली ये प्रथम स्कंद में कहते हैं, सातवां अध्याय में 10वां श्लोक, आत्माराम श्लोक, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुष्क मायावादी वैरागी सार्वभौम भट्टाचार्य को इसी श्लोक के द्वारा परिवर्तन किया। ऋतु कहता है कि ब्रह्मन ब्रह्मन ब्रह्मन, अरे ब्रह्मवादी तेरा महाजन जो है सुखदेव गोस्वामी, हमारे भगवान के पास सुना और उससे आकर्षित हो गया। तेरे दूसरे महाजन जो है चतुष्कुमार, वो भी दंगे घूमते थे, उनको भी कुछ लेना देना नहीं था इस भौतिक संसार से, पर जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों में तुलसी का सुगंध लिया और भगवान और उनके भक्तों के बीच प्रेममयी आदान प्रदान देखा, भगवान कहते हैं कि ये जय विजय मेरे को मेरा हाथ काट लो पर इससे भी मुझे प्रिय है, मैं इनकी गलती मैं स्वीकार करता हूं। जब चतुष्कुमार ने विष्णु और विष्णु के जो भक्त हैं वैकुंठ लोक में उनका प्रेममय आदान प्रदान देखा, भगवान के प्रेम भक्तों के प्रति, भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति, हम 7 जन्म भक्त का नहीं चाहते, हम 3 जन्म असुरों का चाहते क्योंकि वापस आना चाहते हैं, जल्द से जल्द असुर बनेंगे चिंता नहीं, पर जल्दी जल्दी आना चाहते हैं वापस भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये जो प्रेममय आदान प्रदान कुमार देखे तो बोले ये संसार का नहीं है, इस संसार के रिश्ते नाते जैसे नहीं है वो, ये दिव्य है, पूर्ण रूप से दिव्य है। तो भगवान का नाम कथा हो, भगवान का स्वरूप हो, भगवान के प्रेममय रिश्ता हो भक्तों के प्रति, ऐसे ब्रह्मवादी लोग जिनको लेश मात्र भी भौतिकता से कलमश से शुद्ध हैं, वो भी जब सुनते हैं आत्माराम अपने में तृप्त हैं, उनको कोई दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, उनको मुनयः निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब पूर्ण रूप से निरासक्त, अभी ऐसे लोग भी उरुक्रमे, ऐसे भगवान जो अलौकिक सुंदर मधुर आकर्षित लीला करते हैं, उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम, वो अपना ब्रह्म ज्ञान को दूर फेंक कर भगवान की अहैतुकी भक्ति में लग जाते, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, क्यों, इत्थं भूत गुणो हरि, भगवान के गुण, भगवान के जो अनंत गुण हैं ये इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, जिसने उसका आस्वादन कर लिया उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं। तो इस भावना से वो कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनाद अहम्। द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का, जो समस्त वेदों का तुल्य है, अध्ययन अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यास देव से किया। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, हे राजर्षि, मैं निश्चय ही अध्ययन में पूर्णतया स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। और अंत में कहते हैं, तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदताम आशु स्यान मुकुंदे मति सति। मैं उसी श्रीमद् भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर का अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी से आया हुआ है, महाजन है, ध्यान से सुनिए ये श्लोक। क्यों सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्यों परीक्षित महाराज को योग्य व्यक्ति मानकर बोल रहे हैं, और इसे सुनने का लाभ क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं उसी भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूं। तो भागवत जो सुना रहा है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जो मैंने व्यास देव से सुना, जशी आहे तशी, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो ये बोलने वाले की योग्यता है, जो जैसा सुना वैसा सुनाना। ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन पैरेट लाइक रिपीटेशन, तोते जैसा बोलना नहीं। वी शुड स्पीक विथ रियलाइजेशन। श्रील प्रभुपाद जी पहले स्कंद के चौथा अध्याय का पहले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, स्पीकिंग विथ पर्सनल रियलाइजेशन का मतलब क्या? अपना आत्मकथा सुनाना नहीं, अपना आत्म साक्षात्कार के बोलना मतलब अपना आत्मकथा सुनाना नहीं। और जैसी आहे तशी सुना दिया, ठीक है, कुछ नहीं सुनाने से बदले जैसा है सुना वैसे सुना है, तोते जैसा। एक समय में हृदयानंद महाराज जब शुरू शुरू में आए थे, एक महीना भी नहीं हुआ था कृष्ण भावना में आके, उनको प्रचार के लिए भेज दिया, तो क्या करते थे, एक ऐसा चद्दर लगा लेते थे और अंदर एक क्या बोलते हैं, कान में स्पीकर लगा के चालू कर देते टेप रिकॉर्डर, और ऐसा शॉल, मतलब लोगों को लगता था वाह शॉल पहन के आए महाराज, तो ऐसा शॉल पहन के और अंदर में टेप रिकॉर्डर चालू, और उनके पास वो पॉज बटन होता था, एक सुनते थे, एक वाक्य सुनते थे और आंख बंद करके उसी वाक्य को बोलते थे, तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर ध्यान, क्योंकि पॉज बटन के दूसरा सुनना है वाक्य। तो लोगों को लगता था वाह क्या गहराई में सोच के एकदम साक्षात्कार बोल रहे, कुछ नहीं उधर पॉज बटन, अगला वाक्य सुनना है, चलो ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। पर उससे भी श्रेष्ठ है स्पीकिंग विथ पर्सनल रियलाइजेशन का मतलब है, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि रिसाइटर शुड बी नॉट विथ वैनिटी वॉन्टिंग टू सरपास द प्रीवियस आचार्यस। मतलब अहंकार से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो प्रीवियस आचार्यों ने नहीं दिया, पुराने आचार्यों ने, मेरे पास ऐसा कुछ चीज है। जैसा वल्लभ भट्ट गया और महाप्रभु को कहा कि जो श्रीधर स्वामी ने नहीं सुनाया वो मैं सुनाऊंगा आपको, बोले नहीं सुनना है मेरे को, तू वेश्या है, तू जो स्वामी को नहीं मानता वो वेश्या है, श्रीधर स्वामी आचार्य उससे तो ज्यादा नहीं सुनना मेरे को, तब समझ में आया उसको। दूसरा, फुल कॉन्फिडेंस इन द प्रीवियस आचार्य, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आचार्य ने जो दिया है वो सही है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मां के दूध जैसा है बच्चे के लिए, हमारे जैसे बच्चे हैं ना, मां के दूध के समान है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। वी हैव फुल फेथ इन दिस वर्ड्स ऑफ शिला भक्तिवेदांत तात्पर्य। दूसरा, रियलाइज द सब्जेक्ट मैटर सो नाइसली, सबसे पहले उस तत्व को अच्छी तरह से, उसको क्या बोलते हैं, पीस के घोल के हजम करो, समझ लो उस तत्व विषय को, और उसके बाद प्रेजेंट द मैटर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस इन ए सूटेबल मैनर। ऑडियंस कैसा है, उनकी जरूरी क्या है, उनके लिए उपयुक्त उसे प्रस्तुत करो इन एन इंटरेस्टिंग मैनर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, प्रेजेंटिंग इन ए इंटरेस्टिंग मैनर, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, और इन ए मैनर, इंटरेस्टिंग मैनर एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना चाहिए। बड़ा बड़ा लेक्चर दे दिया संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में बोल के चला गया, क्या बोले नहीं मालूम, पर क्या बोले, अरे क्या संस्कृत में बोलते गए श्लोक, पर बोले क्या महाराज वो नहीं मालूम, समझ में तो कुछ नहीं आया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट शुड बी मेंटेन, जो तात्पर्य का जो सार है उसको मेंटेन करना चाहिए, एंड नो ऑब्स्क्योर मीनिंग शुड बी स्क्रूड आउट, अपना खुद का अलग मतलब उसमें ही निकलना चाहिए, जो तात्पर्य का सार है उसको केंद्र में रख के फिर चाहे तो मसाला डालो। कोई आदमी आया भूखा है, उसको आचार नहीं खिलाते हम लोग पूरा पेट भर के, आचार थोड़ा साइड में इधर उधर डालने के बस, पर मेन है सब्जी दाल राइस और चपाती, और थोड़ा उसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा ये वो, तो वो सब अपना पर्सनल रियलाइज, थोड़ा टेस्टी बनाओ, पर मेन चीज शुड बी देयर। तो इस तरह से कैसे बोलना है और कौन और क्यों योग्य व्यक्ति, सुनने का योग्य व्यक्ति कौन है, परीक्षित महाराज, क्योंकि पूर्ण रूप से अनफ्लिंचिंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, निष्ठा भक्त, निष्ठावान भक्त, और निष्ठा का मतलब क्या है, हु हैज फुल फेथ दैट बाय सर्विंग कृष्णा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है, अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आशुचा, ये विश्वास जिसके अंदर है ऐसा व्यक्ति सुनने योग्य है, और वो जब ध्यान से सुनेगा पूर्ण रूप से निश्चित रूप से अंति नारायण स्मृति ही उसको भी जीवन की परिपूर्णता जो है अंति नारायण स्मृति वो प्राप्त होगी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न है या संशय, टीका टिप्पणी? बहुत सरल सी बात है, एक्चुअली मोर देन प्रिय सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा किस चीज का आश्रय ले रहे हैं हम लोग, वो सबसे महत्वपूर्ण है, किस चीज का आश्रय ले रहे हो आप, क्योंकि जब समस्या आती है तो हम स्वाभाविक रूप से उधर भागेंगे जहां हमको लगता है आश्रय है कि नहीं। अगर बारिश आई तो हम लोग डेस्परेटली लुकते, अरे कहां है थोड़ा छत है जहां आश्रय मिलेगा मेरे को इस बारिश से, तो जब बारिश आती है कैसा देखता है आदमी, कहां थोड़ा भी जगह मिला तो उसके नीचे आके खड़ा होता है। तो जिस प्रकार बारिश में व्यक्ति कुछ तो एक छत के नीचे भागने के लिए कोशिश करता है, वैसा क्या हमें 100% कन्विंस है, कन्विंस मतलब कन्विक्शन है कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, भले कितना सुखालयम शाश्वतम लगे पर ये एक्चुअली दुखालयम शाश्वतम है, अशाश्वतम है, और एकमात्र आश्रय समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम, और कोई भी आश्रय का अब आश्रय लो, निश्चित रूप से पदम पदम विपदम फिर से आने वाला विपद, एक ही तरीका है आपके चरण कमल प्रभु, आपकी भक्ति, आपके भक्तों का संग, देर इज नो अदर शेल्टर। अच्छा, ये कन्विक्शन कैसा आता है, जब हम श्रवण करते हैं, सुन सुन के संसार दावा न लली ढलोक, फर्स्ट क्लास चल रहा है गाड़ी, क्यों ये लोग ऐसा बोलते हैं यार, है नहीं संसार दावा, हर रोज पहला शब्द वही बोलते हैं हम लोग भगवान के सामने, स्नान करके दांत घिस के सब कुछ करके तिलक लगा के संसार दावा कोई बोलता है आध्यात्मिक जीवन में? दूसरे कभी मैं सुना नहीं आके बोला अरे जल रहा हूं मैं जल रहा हूं। सब बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का बस, पर हम लोग बोलते हैं कि जल रहा हूं मैं, जल रहा हूं। करोड़पति भी जाके भगवान के सामने यही बोलता है मैं जल रहा हूं, क्योंकि शास्त्र के द्वारा हमको समझना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से। और जहां तक आज यस हमको विश्वास नहीं है, हमको अभी भी 100% हमको आश्रय भगवान अभी तक नहीं है, भले हम कुछ भी कह ले, भले ऊपरी ऊपरी धूप से दिखा भी दे, वो उत्साह भी दिखा भी दे, पर अंदर से वो नहीं है अभी 100%, एटलीस्ट मुझ में नहीं है, मुझे विश्वास 100% मैं कह सकता हूं अभी वो नहीं है। तो इफ यू आर नो एंथुजियाज्म एक्ट एंथुजियास्टिक देन यू विल डेवलप एंथुजियाज्म। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे उत्साह नहीं है, एक्ट एज इफ, ड्रामा करो कि उत्साह है, वाह कितना सुंदर लगा, वाह क्या भागा था, वाह अच्छा, तो दूसरे को अरे इतना है चलो मैं भी जाता हूं, और चार लोगों को देखा तो हमको फिर से उत्साह मिल जाता है, अरे चार लोग आए चलो उत्साह है, हमको अंधश्रद्धा नहीं है, इसीलिए तो हम लोग भौतिक संसार में है, अगर ये सब होते तो रहते क्यों इधर हैं? जेल के अंदर कोई बोलेगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं पर जेल में हूं, अरे ऐसा कैसा अच्छा आदमी जेल में कैसा आया, तू गड़बड़ी है तभी तो जेल में आया, सुपरिंटेंडेंट के अलावा और कोई भी जेल में अंदर है, पैजामा पहना हुआ है स्ट्राइप पैजामा, तो इसका समझ लेने का, कितना भी कहे कि नहीं नहीं एक्चुअल में 100% शुद्ध हूं, वाह तो निकला क्यों बैठा क्यों अभी तक? तो भौतिक शरीर है, त्रिगुणात्मक शरीर है, दोषों से भरा हुआ शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, आश्रय कहीं और है। इसीलिए जब हरिदास ठाकुर को पकड़ लिए और गवर्नर के पास ले जाने के लिए जेल के सामने से ले जा रहे थे, वो जेल के अंदर ही वो बैठा हुआ था, वो जेल के अंदर कहीं बैठा हुआ था गवर्नर, तो कैदियों को सब पता लगा हरिदास ठाकुर आ रहे हैं, हरिदास ठाकुर आ रहे हैं। और ये लोग कौन थे? बड़े अच्छे लोग थे, क्योंकि वो हुसैन शाह जो था, कोई भी थोड़ा मोड़ा कुछ भी हिंदू का पूजा करता था उसको अंदर डाल देता था, तो वो लोग एक्चुअली कैदी नहीं थे, अच्छे लोग थे, कुछ भगवान का पूजा करते थे उसको डाल दिया था अंदर, और उनको विश्वास था साधु के ऊपर, ओ हरिदास ठाकुर महान साधु है, और हमने सुना है कि ऐसा साधु अगर हमको आशीर्वाद दे दे तो हमारे जेल से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, उनको 100% विश्वास था कि हरिदास ठाकुर हमारी ओर कृपा दृष्टि डाल दे जेल से हम लोग निकल जाएंगे। तो जैसा हरिदास ठाकुर आए, आने से पहले ही सब लोग जेल में से चिपक के खड़े हुए थे, कौन है हरिदास ठाकुर, कौन है, कब आएंगे, आतुरता से कब आएंगे, कौन है वो, कौन है, सिर्फ एक बार उनका दर्शन करना है, भले वो हमारा दर्शन नहीं करे हम उनका दर्शन कर देंगे, हमें विश्वास है हम जेल से मुक्त हो जाएंगे। और हरिदास ठाकुर वहां से आए, आते सब जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को कैसा देखता है या चातक पक्षी कैसा बादल को देखता है, वैसे सब लोगों की आंखें हरिदास ठाकुर के ऊपर एक टक मग्न थे। हरिदास ठाकुर ने देखा सबको और कहा, मेरी प्रार्थना है कि तुम अब जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में हमेशा रहो। हाय बोले, एक तो साधु का दर्शन हुआ पर बोला तो क्या बोल दिया, श्राप दे दिया यार, ये तो आशीर्वाद नहीं दिया हमें। हरिदास ठाकुर मुस्कुराने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे समझे नहीं, जहां तक जेल का बंधन है, जेल के बंधन से तुम 2-3 दिन में निकल जाओगे, चिंता मत करो, पर मेरा कहने का मतलब यह है अब तुम बहुत त्रस्त स्थिति में हो, तुम बहुत त्रस्त हो इस जेल के जीवन में, और तुम पूरे उत्सुकता के साथ आश्रय ले रहे हो एक साधु का दर्शन करते हुए, यह समझ के कि यह व्यक्ति की कृपा से हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मैं यही चाहता हूं कि तुम इस परिस्थिति में हमेशा रहो, हमेशा इसी स्थिति में रहो। तो भले हमको, हम जेल में हैं, पर हमें इतना तो विश्वास होना चाहिए कि अगर हम सद्गुरु से श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत का, निश्चित रूप से हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। हमने कोशिश किया, हम निकल नहीं पा रहे, यही एक तरीका है। एक मुक्त आत्मा ही हमको मुक्त कर सकता है, और सब बंधे हुए वो क्या हमको बांधे, वो हम क्या मुक्त करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इन तात्पर्यों का आश्रय लेते हैं, रूपा जी के दिए हुए जो तरीका है उसका आश्रय लेते हैं, तब शायद सुनते 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 चेतो दर्पण मार्जनम एक दिन एक्चुअली ऐसा आएगा जब हमको 100% विश्वास हो जाएगा कि सत्संग भक्तों के संग में आकर हरि कथा का श्रवण करना और भगवान की भक्ति में लगना यही एकमात्र आश्रय है। और भले तू पूरे दुनिया में प्रलय होते रहे, पर अगर हम उस अवस्था में स्थित हैं तो देर इज नो अदर सेफर प्लेस इन दिस मेटीरियल क्रिएशन, देर इज नो अदर सेफर प्लेस इन दिस मेटीरियल क्रिएशन अदर देन एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्लास आसन के ऊपर बैठ के, आई डोंट नो इफ टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर देयर विल आई हैव द सेम कन्विक्शन। अगर प्रलोभन आ जाए और थोड़ा मन उधर उधर भटक जाए या समस्या मेरे जीवन में आ जाए तो मुझे विश्वास नहीं है कि इतना दृढ़ता के साथ मैं कहूंगा। पर एक दूसरे को याद दिलाना हमारा कर्तव्य है, प्रभु जी आप बोले थे कि ऐसा करना चाहिए पर आप खुद नहीं कर रहे। हाँ थैंक यू, आपने याद दिलाया मुझे। ये लड़ाई है, माया के साथ लड़ाई है, और लड़ाई के समय ना सेना साथ में रहना चाहिए। सैनिक अगर एक दूसरा सैनिक है ना, बाय चांस अरे बुलेट किसी को लग सकता है, युद्ध में किसी को बुलेट लग सकता है, कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, एनीवन कैन बी हिट बाय बुलेट। तो अगर साथ में दो चार लोग हैं तो घसीट के वापस ले जाएंगे बेस कैंप को, और वहां थोड़ा बुलेट निकालेंगे, मरहम पट्टी लगाएंगे, फिर से वापस आ चलो तैयार होंगे, बंदूक हाथ में देंगे, प्रोत्साहन देंगे, फिर से खड़ा करेंगे, चलो आ जाओ। तो डोंट थिंक एनी वन टू बी ऑर्डिनरी। एक बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और यज्ञ करने के लिए गए, उनको बोले कि फ्रूट लाओ, तो किसी ने फ्रूट सलाद ले आया। यज्ञ में रखने के लिए फल मांगे तो उसको फ्रूट फ्रूट फ्रूट, अच्छा प्रभुपाद को फ्रूट फ्रूट सलाद, फ्रूट नहीं है फ्रूट सलाद, चलो फ्रूट सलाद ले आओ फ्रूट। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए, जो भी मांग रहे थे कुछ नहीं था उधर, इतना गुस्सा हो गए, सबको डांट रहे थे। तो एक नया व्यक्ति आया था जो इस्कॉन में आके सिर्फ दो दिन हुआ था उसको, उसको किसी भक्त ने बोला था शांत हो हरे कृष्ण जपो, तो प्रभुपाद जी के बगल में बैठा था, तो प्रभुपाद जी जब क्रोधित थे उसने कहा शांत हो जाओ हरे कृष्ण जपो। देखिए कौन किसको क्या बता रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डाला। पर ये सब इतना सब उल्टा सीधा हो रहा है, प्रभुपाद जी गुस्सा, टीवी लोग सब आके खड़े हुए हैं, वो फ्रूट मांगा तो फ्रूट सलाद ला रहे हैं लोग, सब उल्टा सीधा हो रहा है, बहुत गुस्से हैं प्रभुपाद। और उस समय ये नया हिप्पी लंबा बाल रख के जींस पहन के फटेला कमीज पहन के आया और बोल रहा है शांत हो जाओ, गुस्सा है तो हरे कृष्ण बोल रहा है। तो प्रभुपाद उसकी ओर देखे और मुस्कुराने लगे, बोले क्या बोलूं इसको मैं। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं प्रभुपाद की स्थिति क्या है, ये मूर्ख किसने किसको बोला, बोला भी कृष्ण को भगवत गीता सुनाने के बराबर है। अर्जुन अगर कृष्ण को बोले प्रभु भगवत गीता में आपने ये बोला था, इस तरह से। पर हमको समझना चाहिए कि हम अगर चार लोगों को बोले रहे तो हम जब समस्या से गुजरेंगे तो वो भक्त ना उस दवाया भक्त भी बोल सकता है कि प्रभु जी आपने तो बोला था समस्या आने से हरे कृष्ण जपना चाहिए। हा थैंक यू आपने याद दिलाया मुझे, अच्छा है कोई ना कोई तो हमको याद दिलाएगा। अगर हम याद दिलाते रहेंगे सबको शायद एक ना एक ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान हमको किसी और के द्वारा एक नवसुखिया भक्त के द्वारा भी भले याद दिलाएंगे हमको। सेफ, देर इज नो सेफर पोजिशन इन दिस मेटीरियल क्रिएशन than a situation where we are hearing and chanting or engaging in devotional service in the association of sincere, pure-hearted devotees. This should be our real shelter. ये हमारा आश्रय होना चाहिए. श्रवणम कीर्तनम भक्तों के संग में. संकीर्तन एक शब्द में कहा जाए संकीर्तन, संग में आकर कीर्तन जहां हो रहा हो वो ही जगह सबसे सुरक्षित जगह है. इसलिए श्रीवास ठाकुर ने कहा अरे बच्चा मर गया हो गया ना, इससे अच्छा सुरक्षित जगह में मरना का क्या है, क्यों चिंता करते हो आप लोग, हमको विश्वास नहीं है, हमको विश्वास नहीं है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रेमानंदी.